दिन भर 7 सितंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलेगा पाकिस्तान, इमरान खान सरकार के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बीबीसी से कहा।
करतारपुर बॉर्डर जो है वो खोला जा रहा है, जो गुरुद्वारा है उस तक आने के लिए जो वीजा है वो नहीं होगा, वहां से एक रास्ता बनाया जाएगा।
अनशन के 14वें दिन पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अस्पताल में दाखिल, और विवेचना में रेहान फजल आज जिक्र कर रहे हैं उन इंसानी भावनाओं का जिन पर खुलकर कम होती है बात।
आपको सीरियसली अगर अपने पैर के साथ किसी को सेड्यूस करना है, बैठिए, अपना सैंडल उतार दीजिएगा और अपना पैर थोड़ा सा फ्लेक्स कीजिए, थोड़ा दिखाइए, थोड़ा इधर उधर मोड़िए पैर को। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बॉडी।
लेकिन पहले सुनिए विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार जल्द ही भारत से करतारपुर गुरुद्वारा साहिब आने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि करतारपुर सरहद खोले जाने के बाद गुरुद्वारे तक आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। ईरान, रूस और तुर्की के राष्ट्रपति तेहरान में त्रिपक्षीय सम्मेलन में विद्रोहियों के मजबूत गढ़ इदलिब में सैन्य अभियान के भविष्य पर बातचीत कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि इदलिब में खून खराबा रोकने का ये आखिरी मौका है, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि चरमपंथ से लड़ाई टाली नहीं जा सकती। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और तुर्की पर इदलिब की समस्या का कूटनीतिक समाधान निकालने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सेना के प्रमुख जैन एजलैंड ने कहा कि तीनों देशों को ऐसे समझौते पर पहुंचना चाहिए जिससे स्थिति का हल खून खराबे की बजाय बातचीत से निकाला जा सके। उन्होंने कहा,
आई एम अमंग दोस दैट डू नॉट एक्सेप्ट दिस रिलेंटलेस काउंटडाउन टू सम।
मैं उन लोगों में से हूं जो ऐसे युद्ध की उल्टी गिनती शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता जिसमें आम लोग दो तरफ की गोलीबारी में फंस जाएंगे। इदलिब में लाखों बच्चे भी हैं, वे बिल्कुल निर्दोष हैं, इसलिए इस पर निर्णायक फैसला लेने की शक्ति और जिम्मेदारी रूस और ईरान की है जो सरकार की ओर से लड़ रहे हैं, और तुर्की की भी है जिसके सशस्त्र विद्रोही गुटों से मजबूत संबंध हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सेना के प्रमुख जैन एजलैंड के शब्द। चुनाव अभियान के दौरान हमले का शिकार हुए ब्राजील के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हाइयर बोल्सोनारो ने अस्पताल से अपना एक वीडियो जारी किया है। विवादों में रहने वाले ब्राजील के इस दक्षिणपंथी नेता ने कहा है कि उन्हें जोखिम का अंदाज़ा था लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि उनके लिए जान का ख़तरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि इंसानी दिमाग इतनी बुराइयों वाला हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें अस्पताल में कम से कम एक हफ्ता गुजारना पड़ सकता है। हाइर बोल्सोनारो पर गुरुवार को एक चुनावी रैली में धारदार हथियार से हमला किया गया था जिसके बाद अस्पताल में उनके घावों के इलाज के लिए कई घंटे तक सर्जरी की गई थी। पुलिस ने बताया कि हमलावर को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो ने एक पत्रकारों से कहा कि उनके पिता पर हुआ हमला उन्हें जीत के रास्ते तक पहुंचाएगा। वो इतने मजबूत कभी नहीं थे, वो होश में हैं, वो बात कर रहे हैं और हमेशा की तरह तैयार हैं। जो लोग एक पारिवारिक किस्म के आदमी को तबाह करना चाहते थे उनसे ये कहना है कि ब्राज़ील आपने अभी अभी अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। ये थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हाइर बोल्सोनारो के बेटे फ्लाविया के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलिस प्रमुख को पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों के अपहरण की हालिया घटनाओं और राज्यपाल से मतभेद के चलते पद से हटा दिया गया है। एसपी वैद ने इससे पहले अपने तबादले की सुगबुगाहटों को खारिज किया था। प्रदेश के खुफिया प्रमुख को भी बदल दिया गया है। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस ने पुलिसकर्मियों के अगवा रिश्तेदारों के बदले कुछ चरमपंथियों के रिश्तेदारों को जेल से रिहा किया था। पाकिस्तान की नई सरकार ने अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात एक अर्थशास्त्री की नियुक्ति इस्लामी गुटों और विपक्ष के विरोध के बाद रद्द कर दी है। सूचना मंत्री ने बताया कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आतिफ मियाँ को सलाहकार परिषद में अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया है। कुछ ही दिन पहले सूचना मंत्री ने उनकी नियुक्ति का बचाव किया था। जिम्बाब्वे में जुलाई में हुए चुनाव पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगावे ने कहा है कि वो एमसर्न मनांगुआ को देश का विधि सम्मत नेता स्वीकार करते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज प्रियदर्शी का नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। भारत की सीमा से करीब पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा एक बार फिर चर्चा में है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार जल्दी ही गुरुद्वारा साहिब तक आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए कॉरिडोर खोलने जा रही है। ये गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारोवाला जिले में है और ये भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लंबे वक्त से इस रास्ते को खोलने की मांग होती रही है। इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी से बातचीत में फवाद चौधरी ने कहा कि गुरुद्वारे तक आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। चौधरी ने इस खास बातचीत में यह भी कहा कि उनकी सरकार भारत से बातचीत करना चाहती है, लेकिन भारत की ओर से अभी तक सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
एक बात बड़ी वाजह है, इमरान खान और आर्मी चीफ दोनों ये समझते हैं कि पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, एक मुल्क रीजन में तरक्की नहीं करता, रीजन्स तरक्की करती हैं। और इसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली तकरीर में कहा, हिंदुस्तान एक कदम बढ़ाए, हम दो कदम बढ़ाएंगे।
जो माजी की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत भी, वो भी तो यही करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, इंडिया के साथ ताल्लुक को बेहतर बनाना चाहते थे।
इमरान खान की खारजा पॉलिसी में एक बुनियादी फ़र्क है। नवाज शरीफ की पॉलिसी थी नवाज शरीफ स्टील मिल जनरल मोदी, इमरान खान की ये खारजा पॉलिसी नहीं है। इमरान खान की खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और टर्की, पाकिस्तान और वाशिंगटन।
तो आपने कहा कि फ़ौज एक सफ़े पे है, तो क्या फ़ौज अब जो भी आप इनिशिएटिव लेंगे या जो भी आपकी पॉलिसी, आपको लगता है कि फ़ौज मुत्तफिक होगी?
जो इनिशिएटिव भी हम लेते हैं वो हम इदारों के इनपुट के बाद लेते हैं। तमाम इदारे हमारे साथ हैं, हम तमाम इदारों के साथ।
कोई बातचीत की बात हो रही है, नवजोत सिंह सिद्धू जो आए थे, क्या कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है?
मैसेज तो था, मैसेज तो अमन ही का है, मैसेज तो पैगाम तो अमन ही का है। और हम ये समझते हैं कि अगर आपने अमन जो है वो लाना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर अगर अमन है तो अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहिए, अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहिए तो रीजन के अंदर अमन चाहिए। सो हिंदुस्तान के साथ हम बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं। उनके जो इशूज़ हैं उनका हमें पता है, हमारे इश्यूज़ का उन्हें पता है।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो फ़ौज है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी तरफ से भी ऐसे इशारे दिए गए हैं कि जो डायलॉग प्रोसेस है उसको इनिशिएट होना चाहिए, इंडिया के साथ बेहतरी आनी चाहिए ताल्लुकात में।
100% पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं।
लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट भी तो होता है ना, फिर कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि बातचीत बीच में होती है फिर बीच में खत्म हो जाती है।
वो तो मैंने आपको पहले कहा कि दोनों तरफ ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ भी ग्रुप्स हैं।
गैप को कैसे ब्रिज करेंगे आप लोग?
ये तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये तो
आप हुकूमत है। अब
हम तो कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान को रेसिप्रोकेट। इमरान खान ने क्या किया, आते ही उन्होंने 3 जो प्लेयर्स हैं अपने उनको बुलाया, नरेंद्र मोदी साहब से उनकी बात हुई, पहली तकरीर में उन्होंने कहा आप एक कदम बढ़ाएं हम दो कदम बढ़ाएंगे। इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए ना।
जो इंडिया की हुकूमत है उससे कैसा रिस्पांस है, क्या वाइब्स हैं अभी तक?
मुझे लगता है कि बीजेपी एक स्टक है इस मामले में कि अब अगला इलेक्शन आ रहा है 2019 में, तो क्या उससे पहले पाकिस्तान के साथ वो मुजाकरात शुरू करे या पाकिस्तान की तरफ एक अमन का हाथ बढ़ाए, तो उनका अपना वोट बैंक तो खराब नहीं होगा।
तो अभी तक कोई इंडिया की तरफ से जवाब नहीं आया,
उतना उस तरह रेसिप्रोकेट नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था।
करतारपुर जो बॉर्डर है उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है अभी तक?
करतारपुर बॉर्डर जो है वो खोला जा रहा है और करतारपुर में वही जो गुरुद्वारा है उस तक आने के लिए जो वीज़ा है वो नहीं होगा और वो वहाँ से एक कह लीजिए कि रास्ता बनाया जाएगा और जो यात्री हैं वो वहाँ पर आ सकेंगे, अपना टिकट पे करेंगे और उसके बाद जो है वो वापस चले जाएंगे। इस किस्म का एक निज़ाम वज़ा करने की कोशिश हो रही है।
और ये कब तक हो जाएगा?
मेरे ख्याल चंद माह में हो जाना चाहिए।
इसके ऊपर काम शुरू हो गया है?
इसके ऊपर काम जो है वो बातचीत हो रही है।
ये थे पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी और उनसे बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। बीते महीने कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गए थे। भारत वापसी पे उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान से इस रास्ते को खोलने पर बात हुई है। सिद्धू ने ताज़ा घटनाक्रम पर खुशी जाहिर की है, वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्हें अब तक इस मामले में हुई प्रगति की कोई जानकारी नहीं है। सुनिए रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने भारत से जाने वाले सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा करतारपुर के लिए रास्ता देने पर एक बार फिर से सहमति जतलाई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के इस बयान का स्वागत किया है।
हर पंजाबी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। इससे बड़ी नयामत, इससे बड़ी गिफ्ट बाबा नानक की तरफ से हमारे लिए कोई भी हो नहीं सकती। और मेरी विनम्र विनती है हर सरकार में बैठे औहदेदार भारत की सरकार को कि वो दो कदम चल दिए हैं, आप अब एक कदम चलिए।
बताते चलें कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समागम के दौरान पाकिस्तान आर्मी चीफ ने सिद्धू के साथ मुलाकात भी की थी। आर्मी चीफ ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव पर सिद्धू के साथ चर्चा की थी, ऐसा सिद्धू का दावा है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान के जिला नारोवाल में स्थित है में गुरु नानक देव जी ने अपने आखिरी 18 वर्ष बिताए थे। यह स्थान भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 4 किलोमीटर पर स्थित है जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले के साथ लगता है। राजनीतिक तौर पर कॉरिडोर खोलने की चर्चा तो जरूर है, लेकिन जहां से ये रास्ता खोला जाना है वहां के प्रशासन को इस बाबत कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर विपुल अजवल का कहना था,
जो जिला प्रशासन के स्तर पे जो काम किया जाना है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के ऊपर जो निर्णय लिया जाएगा उसकी अनुपालना के लिए वो हमें भेजेंगे और उसके बाद जिस तरह की हमारे को हिदायतें प्राप्त होंगी उसके आधार पे हम काम करेंगे। हमें अभी तक कोई हिदायत सरकार की तरफ से इस बारे में नहीं प्राप्त हुई है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल ने पाकिस्तान द्वारा दिए गए करतारपुर कॉरिडोर के बयान का स्वागत किया है और भारत सरकार से अपील की है कि वे इस संबंध में पाकिस्तान से वार्ता करें। डेरा बाबा नानक से बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन।
अगली खबर भारत के गुजरात से। बीते 14 दिनों से अनशन कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने अब से कुछ वक्त पहले अहमदाबाद में मौजूद बीबीसी गुजराती सेवा के अपने साथी तेजस वैद्य से बात की।
हार्दिक पटेल के जो अनशन था वो 14 दिनों से चल रहा था, आज 14वां दिन था और कल रात से ही उसकी जो तबीयत थी वो काफी नादुरुस्त चल रही थी। उसके चलते उसकी जो पूरी जो टीम है पाटीदार अनामत आंदोलन समिति उनके जो संयोजक है वो भी काफी चिंतित थे। तो आज दोपहर को वो जहाँ पे अनशन कर रहे थे वहां से उनको एक आईसीयू व्हीकल जो सरकार ने वहां पे रखी थी वहां से बिठा के उनको एक अहमदाबाद सरखेज हाईवे के ऊपर एक सिविल अस्पताल है वहां पे हार्दिक को लाया गया है। यहां पे फिलहाल वो आईसीयू में ही एडमिट है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हार्दिक ने ऐसा कहा है कि वो अस्पताल में भी अपने मुंह से कुछ नहीं लेंगे और उनका जो अनशन है वो अभी भी।
जिन मांगों को लेकर हार्दिक पटेल आंदोलन कर रहे हैं क्या सरकार ने उनसे बात की है, कोई किसी तरह का कोई आश्वासन उनको मिला है?
मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। पिछले 2-3 दिन पहले राज्य सरकार के जो ऊर्जा मंत्री है सौरभ पटेल उन्होंने कहा था कि पाटीदार आंदोलन के से उठे जो सवाल है उनको ध्यान में रख के बहुत सारी योजनाएं भी हमने तैयार की हुई है, हमने आयोग भी बनाया हुआ है। और मेरी हार्दिक से गुजारिश है कि वो अपना अनशन समेट ले, मेरी उनसे प्रार्थना है, ऐसा सरकार के जो ऊर्जा मंत्री है सौरभ पटेल ने कहा था। लेकिन उन्होंने हार्दिक की जो 3 महत्वपूर्ण मांग है, सबसे पहली मांग ये है कि खेडूतों के ऊपर जो कर्ज है वो हटाया जाए, दूसरा है कि उनके जो सहयोगी है अल्पेश कथीरिया उनके ऊपर से राजद्रोह का जो केस लगा है वो हटाया जाए, और तीसरी जो दरख्वास्त है कि आरक्षण मिले, ये तीसरी जो मांग है उनके ऊपर उन्होंने कोई कमिट नहीं की थी। देखा जाए तो सरकार ने अपनी ओर से कोई ऐसी राय या दरख्वास्त नहीं रखी थी कि उनकी मांगों को मान लिया गया है या मान लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का एक जो पाटीदार समुदाय का एक महत्वपूर्ण संगठन है खोडल धाम, उनके जो चेयरमैन है नरेश पटेल वो उनको दोपहर को मिलने आए थे और उनके बाद हार्दिक पटेल को यहाँ के सिविल अस्पताल में एडमिट किया गया था। तो जो नरेश पटेल की उनसे जो भेंट हुई ये काफी अहम भेंट है।
पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अस्पताल में भर्ती, जानकारी दे रहे थे बीबीसी गुजराती सेवा के तेजस वैद्य।
बीबीसी इंडिया बोल।
एक तरफ दलितों की नाराजगी तो दूसरी तरफ अगड़ों की ललकार, तेल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती साख। 2019 के आम चुनावों के पहले चुनौतियों के चक्रव्यूह से बीजेपी को निकाल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 8 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या फिर 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है विवेचना का। भारतीय समाज महिलाओं और पुरुषों के संबंधों और सेक्स के बारे में खुलकर बात करने से अक्सर बचता है। हाल ही में लंदन में रहने वाली सीमा आनंद की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने रिझाने की कला पर बहुत बेबाकी और गंभीरता से बात की है। आज की विवेचना में रिहान फजल चर्चा कर रहे हैं इस पुस्तक में उठाए गए कई मुद्दों पर।
मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महकारी महका आधी रात को। हो मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को।
ये एक विडंबना है कि भारत जैसे देश में जहाँ कामसूत्र की अवधारणा रची गई और प्रेम की भाषा को खजुराहो, दिलवाड़ा, अजंता और एलोरा के पत्थरों पर उकेरा गया, उसी देश में लोग प्रेम संवाद और रिझाने की कला भूलते जा रहे हैं। एक अंग्रेज लेखक हुए हैं साइमन रेवन, जिनका मानना था कि सेक्स एक ओवररेटेड अनुभूति है जो मात्र 10 सेकेंड के लिए रहती है। वो सवाल करते थे कि कोई क्यों प्राचीन भारत के इरोटिक साहित्य का अनुवाद करने की सहमत उठाए। मैंने यही सवाल रखा चर्चित पुस्तक द आर्ट्स ऑफ सिडक्शन की लेखिका डॉक्टर सीमा आनंद के सामने और पूछा कि क्या वो साइमन रेवन के इस वक्तव्य से सहमत हैं?
नॉट एट ऑल। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोच है इस पर वो ऐसे बदल गई है दैट दैट इज हाउ वी लुक एट थिंग्स। आई थिंक कि कितनी सेंचुरीज से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, हमें सिखाया जाता है दैट इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ यूजलेस थिंग, इट्स अ सिनफुल थिंग। प्लेजर के बारे कोई बात ही नहीं करता, नोबडी सेज कि इसमें इतना आनंद आ सकता है। 325 AD में कैथोलिक चर्च सेट अप देयर फर्स्ट एक्यूमेनिकल काउंसिल वेयर दे स्टार्ट टू से अपने रूल्स और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए दे स्टार्ट टू से कि द बॉडी इज बैड, ये पाप है, ये सिन है, प्लेजर इज वेरी बैड, सेक्स शुड ओनली बी हैड फॉर प्रोक्रिएशन। और उसी टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 325 AD के आसपास ही कहते हैं कि वात्स्यायन गैंजीज के किनारे, गंगा के किनारे बैठकर अपने कामसूत्रा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लेजर इज वेरी गुड और किस तरह प्लेजर को बढ़ाया जा सकता है। एंड आई फाइंड इट इनक्रेडिबल साइमन रेवन ने कहा है कि यू नो इट्स अ पॉइंटलेस थिंग विच लास्ट 10 seconds। एंड एलेक्स कम्फर्ट व्हेन ही रोट हिज बुक ही सेड कि बिकॉज इस तरह से लोगों की सोच है इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग बैक द आइडिया ऑफ प्लेजर एंड आई एग्री। सो
कहा जाता है कि एक प्रेमी के रूप में मर्द और औरत में बहुत फर्क होता है और उनकी यौनिकता यानी सेक्सुअलिटी के स्रोत में जमीन आसमान का अंतर होता है।
वात्स्यायन सेज वुमेन एंड मेन आर कंप्लीटली डिफरेंट। मेन आर लाइक फायर, आग की तरह वो बहुत आसानी से भड़क उठते हैं और बहुत आसानी से बुझ भी जाते हैं। एंड इट स्टार्ट्स एट द जेनिटल्स, उनकी डिजायर स्टार्ट्स डाउन देयर एंड इट गोज अपवर्ड्स। औरत पानी की तरह है, हर डिजायर बिगिंस इधर ब्रेन में and it flows downwards. Pani ki tarah it takes very long usko uski desire ko ubhalne mein aur pani ki tarah bahut der lagti hai usko baithne mein bhi. So he says ki agar hum isi baat par chhod dein to men and women would never be able to come together kyunki unka desire kahin par match kar hi nahi pata. And so he says ki ye jo foreplay hai, seduction hai, foreplay bhi nahi kehte, seduction ki baat karte hain, it's very important taki har ek choti choti nerve ending ko arouse karke jis tarah ki प्लेजर के बारे बात करते हैं कि किस तरह, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट कि किस तरह यू फील फ्रॉम इनसाइड।
सेक्स पर काफी शोध कर चुके भारत के नामी सेक्सोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर प्रकाश कोठारी स्त्री पुरुष के प्रेम के अंतर को एक दूसरे ढंग से समझाते हैं।
मर्द प्यार देता है सेक्स पाने के लिए और औरत सेक्स देती है प्यार पाने के लिए, ये सॉलिड ट्रुथ आपको हिंदुस्तान में जरूर मिलेगा।
जहां तक शादी की बात है, ताजा ट्रेंड जानने हो तो शादी के लिए दिए गए विज्ञापनों पर नजर दौड़ाइए। सीमा आनंद एक दिलचस्प बात बताती हैं कि स्त्री पुरुष संबंधों को ताजा और रोमांचक बनाए रखने के लिए उनके बीच कभी कभार लड़ाई होना जरूरी है।
कामसूत्र में वात्स्यायन ने कहा है कि लड़ाई बहुत जरूरी है टू कीप इट फ्रेश, एंड ही ऑल्सो सेज कि मर्द का काम है टू मेक अप, औरत का काम है टू हैव द टैंट्रम, टू गेट एंग्री। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तब होनी चाहिए इफ़ देर इज़ अ लॉट ऑफ लव बिटवीन द मैन एंड द वुमन. अगर इतना सिक्योर रिलेशनशिप नहीं है तो फिर ये टूट भी सकता है लड़ाई करने से. वात्स्यायन सेज कि टैंट्रम ऐसा होना चाहिए दिल खोल कर लड़ाई करो. ही सेज कि चीखो चिल्लाओ, अपने गहने तोड़ कर नीचे फेंको, चाहे उसको मारो हाथ से, चाहे मारो पैर से, जो भी, एंड द मैन हैज़ टू टेक इट ऑल. बट एक चीज़ है सिर्फ, औरत लड़ाई कर सकती है एंड शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स, पर घर के बाहर नहीं जा सकती. बुक में लिखा है कि द मैन विल मेक अप द फाइट फाइनली, अपना सिर उसके पैरों पर रख के, बट ये उसको बाहर करना परमिटेड नहीं था, घर के बाहर. ये सिर्फ घर के अंदर हो सकता था, उसके पैरों पर गिर.
सैया रूठ गए, मैं मना पी रही, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही जी, सैया रूठ गए.
कामसूत्र की बात मानी जाए तो प्रणय निवेदन करने की एक गुप्त भाषा होती है, और इजहारे इश्क सिर्फ जुबान से ही नहीं किया जाता.
चाहे आप जितने मर्जी अमेजिंग हो, आपने सक्सेसफुली बिजनेस रन, सो बहुत पैसे भी हो, आपने बाकी सब आर्ट्स ऑफ सेडक्शन सीख लिए, आप बहुत कुछ अमेजिंग बातें कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, पर अगर आपको सीक्रेट लैंग्वेज नहीं मालूम तो आप कभी ये जान नहीं पाएंगे कि आपकी प्रेमिका आपसे क्या कहना चाह रही हैं, और आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे. ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हाईली डेवलप थी कि आप किसी भी बात पर गुफ्तगू कर पाएं एक दूसरे के साथ, और कोई वर्ड्स उसमें इस्तेमाल ना हो. अगर आप पब्लिक में हैं, जैसे किसी मेले में हैं, और आपको अपनी प्रेमिका मेले के उस तरफ खड़ी दिख गई, पहले अगर कान के ऊपरले हिस्से पर हाथ लगाओ तो उसका मतलब आप कैसे हो. फिर प्रेमिका होपफुली आपको देख के खुश हुई होंगी, तो वो कान के नीचे द ईयर लोब, कान के नीचे का हिस्सा पकड़ के आपकी तरफ देखें, इसका मतलब कि आपको देखकर अब बहुत खुश हो गई. फिर प्रेमी अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रख के, और फिर एक हाथ सिर पर रख के, इसका मतलब कि तुम्हारे बारे सोच सोच के अब मेरा दिमाग खराब हो गया. एंड इट गोज ऑन कि किस तरह से वो आगे क्या कहेंगे, क्या किस तरह से कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी.
मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से.
निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने कहां से.
यूं तो स्त्री पुरुष को उत्तेजित करने के लिए दोनों के शरीर में कई इरोटिक नर्व्स होती हैं, लेकिन इन सबसे कहीं अधिक उत्तेजित करने का काम करता है मस्तिष्क, यानी दोनों की बौद्धिक क्षमता.
आजकल आई थिंक एक वर्ड आ गया है जो सोसाइटी में बहुत यूज हो रहा है, कॉल्ड सेपियोसेक्सुअल, व्हिच मींस वुमन हु इज ओनली टर्नड ऑन बाय इंटेलेक्ट इज कॉल्ड सेपियोसेक्सुअल. तो ये 2000 साल पहले वात्स्यायन कहते हैं कि द ब्रेन द इंटेलेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो 64 कलाओं के बारे जो बात की है इन्होंने, उसमें 10 या 12 आर फोकस्ड ऑन द ब्रेन. सो ही सेज के लवर्स को क्रॉसवर्ड पजल करने चाहिए, वर्ड रिडल्स करने चाहिए, ब्रेन डेवलप करना चाहिए, लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, लर्न साइन लैंग्वेजेस. ही इज़ वेरी फोकस्ड कि जिस तरह से आदमी या औरत बात करती है, किस चीज़ों पर बात करती है, अगर बात ना कर पाए इंटेलिजेंटली तो फिर हाउ लॉन्ग डज द अट्रैक्शन लास्ट.
सीमा आनंद ने अपनी पुस्तक का एक पूरा अध्याय चुंबन की कला को समर्पित किया है. वो कहती हैं कि एक चुंबन की क्रिया में चेहरे की 34 और पूरे शरीर की 112 मांसपेशियां भाग लेती हैं.
एक चीज अगर आप करें दिन में, और चाहे कुछ करें ना करें, एक चीज सिर्फ करें, आप अपने पार्टनर को एक बारी दिन में किस कीजिएगा, प्रॉपर किस, विच विल लास्ट 10 seconds. आई हैव नोटिस्ड कि नॉर्मल जो किसिंग होती है, जो हमने रिसर्च किया, 2 या 3 seconds ज्यादा से ज्यादा लास्ट करती है. 2 seconds के बाद लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो बहुत हो गया, यू नो. 10 seconds काफ़ी लंबा टाइम होता है. इट रजिस्टर्स बिकॉज इट मेक्स एन इम्पैक्ट. इट्स टू शो दैट यस यू आर द पर्सन इन माई लाइफ. इट रियली मेक्स अ डिफरेंस.
स्त्री पुरुष शारीरिक संबंधों में पैर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इस पर बहुत कम लोगों की नजर गई है. सीमा आनंद का मानना है कि रिझाने की कला में पैर कुछ खास होते हैं और महिलाओं को अपने चेहरे से ज्यादा अपने पैरों की देख रेख पर ध्यान देना चाहिए।
सारी जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं वो जाके पैर में खत्म होती हैं। दैट मींस दैट इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट एनीवे। आजकल आई फाइंड कि हम लोग अपने पैर को जकड़ लेते हैं इतने हाई हील्स वगैरह में। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे कि आपको सीरियसली अगर अपने पैर के साथ किसी को सेड्यूस करना है, बैठिए, अपना सैंडल उतार दीजिएगा और अपना पैर थोड़ा सा फ्लेक्स कीजिए, थोड़ा दिखाइए, थोड़ा इधर उधर मोड़िए पैर को। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि बहुत लोग अपने फेस पे बहुत मेकअप लगा लेंगे, हाथों को मैनिक्योर करा लेंगे और पैरों के वो पीछे हील्स एड़ियाँ फटी हुई हैं। यू नो, लर्न टू कीप योर फीट मोर ब्यूटिफुल बिकॉज इट्स द सेक्सीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी।
पांव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी।
सेक्स में खाने की भी अपनी अहमियत है। क्या खाया जाए, कब खाया जाए, कितना खाया जाए और कैसे खाया जाए, इन सब के कुछ न कुछ माने हैं।
अगर पहले खाना खा लो तो कितनी ब्लोटिंग हो जाती है। खाने को डाइजेस्ट करने में सारी आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी लग जाएगी। वेयर इज द एनर्जी फॉर सेक्स? वेयर इज द डिजायर? दिल भी नहीं करता। खाना शुड बी गिवन आफ्टरवर्ड्स एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत अच्छा खाना हो। एंड ही सेज के एट दिस पॉइंट प्रेमी प्रेमिका को खिलाता है बहुत प्यार से इस टाइम पर, और हर चीज़ उठाकर पहले अपने आप बाइट लेकर फिर उसको देगा, कहेगा कि अच्छा ये सॉल्टी है, ये ट्राई करो ये मीठा है, ये ट्राई करो ये ऐसा है। हम लोग जो कहते हैं ना कि अच्छा डेट पर जा रहे हैं, विल गो टू अ फैबुलस डिनर, कितनी चाहे जितना मर्जी अच्छा डिनर हो जाए, चाहे जितनी मर्जी अच्छी बातें हो जाए, चाहे जितनी मर्जी फ्लर्टिंग हो जाए, उसके बाद क्या होता है कि वो एक्सपेक्टेशंस कभी मीट नहीं हो सकती क्योंकि वो बॉडी की एबिलिटी है ही नहीं।
अंधेरिया है रात सजन रहियो के जइयो, अंधेरिया है रात सजन रहियो के जइयो, सोने के थानी में।
रेहान फजल की विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब खेल की खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं सूर्यांशी पांडे। सूर्यांशी, ये बताइए, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच चल रहा है, भारत तो सीरीज हार गया है, क्रिकेट प्रेमी को फिर भी रोमांच है, और खासकर इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान और ओपनर हैं उनका एलिस्टर कुक, उनका आखिरी टेस्ट है, तो अभी ताज़ा स्कोर क्या है बताइए।
हाँ पंकज जी, आज केनिंगटन ओवल में मैच है ये लंदन में, और अभी इंग्लैंड अपनी पहली पारी खेल रहा है जिसमें 54 ओवर में 117 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर। और जो रूट जो है उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी क्या, उन्हें उम्मीद थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एलिस्टर कुक इस बार अपने आखिरी मुकाबले में शतक बनाए, तो मेरे ख्याल से एलिस्टर कुक उसी रणनीति से के साथ जो है मैदान पर डटे हुए हैं।
अभी ताजा स्कोर देख रहा हूँ, 60 रन बना चुके हैं, तो नजदीक हैं,
बिल्कुल,
एक अच्छा सा रिकॉर्ड बना के विदाई ले शायद।
बिल्कुल बिल्कुल। और मोइन अली अभी मैदान पर डटे हुए हैं 23 रन बनाकर, और जबकि केटन जेनिंग्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं और उनका विकेट लिया था रविंद्र जडेजा ने।
बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यांशी आपका। और अब चलते चलते समय है मुख्य समाचार का, समीर आत्मज मिश्र से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार जल्द ही भारत से करतारपुर गुरुद्वारा साहिब आने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर खोलने जा रही है। ईरान, रूस और तुर्की के राष्ट्रपति तेहरान में त्रिपक्षीय सम्मेलन में विद्रोहियों के मजबूत गढ़ इदलिब में सैन्य अभियान के भविष्य पर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात एक अर्थशास्त्री की नियुक्ति इस्लामी गुटों और विपक्ष के विरोध के बाद रद्द कर दी है। दक्षिण कोरिया में अभियोजक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली सांग हून के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ली सांग हून पर आरोप है कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के समूह के प्रबंधन विभाग के प्रमुख थे तो उन्होंने वहाँ लेबर यूनियन की गतिविधियों को खत्म करने की कोशिश की थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे कपिल देव सिंह। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ मौजूद है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। पंकज प्रियदर्शी को सभी साथियों के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।